नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया में ऊर्जा ढांचे पर हमलों की निंदा की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ईरान ने इसराइल के उत्तरी शहर हाइफा में तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमले किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और भारत 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात कर ईद की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर हमले की निंदा करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की कामना की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जल मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन पर जोर दिया। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हाल के हमलों को बेहद चिंताजनक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन हमलों से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के और अधिक अस्थिर हो जाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है, सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है और ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के इस्तेमाल पर काम कर रही है।
शिपिंग के रास्तों में रुकावट आई है, जिससे एलपीजी की सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। इसलिए हम घरेलू खपत और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम दूसरे देशों से भी एलपीजी मांगने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे देश में ऊर्जा की कमी न हो।
ईरान में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इनमें कश्मीर की लड़कियां भी शामिल हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। सरकार इन विद्यार्थियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा है कि देश में रसोई गैस और परिवहन के लिए सीएनजी की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पश्चिम एशिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 2 सप्ताह के भीतर लगभग 1,25,000 रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं।
भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 2,80,000 यात्री स्वदेश लौट चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। इन देशों ने ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है। एक रिपोर्ट।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय की ओर से जारी संयुक्त बयान में इन देशों ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और उससे तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वे होर्मुज जल डमरू मध्य को व्यापारिक जहाजों के लिए बंद करने की धमकी देना, बारूदी सुरंग बिछाना तथा ड्रोन और मिसाइल हमले तुरंत बंद करें। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के रास्ते में रुकावट और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्री मार्गों की आजादी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अहम सिद्धांत है और ईरान की कार्यवाही का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहित अन्य देशों से अपील की कि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से व्यापारिक जहाजों के लिए खोलने में मदद करें। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से तेल और गैस केंद्रों को नुकसान पहुँचा है जिससे कीमतें बढ़ी है।
इसराइल ने कहा है कि उत्तरी शहर हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर ईरान के मिसाइल हमले से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार हाइफा में कई जगहों पर बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं। पिछले महीने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद से ईरान लगातार पश्चिम एशिया में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इस हफ्ते ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इसराइल के हमले के जवाब में खाड़ी क्षेत्र के कई तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका का सैन्य अभियान पूरी दुनिया की रक्षा के लिए है। कल यरूशलम में उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक कमजोर हो गई है और ईरान अब यूरेनियम संवर्धन या बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण नहीं कर सकता। श्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग को बाधित कर दुनिया को परेशान करने के प्रयास में सफल नहीं होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य धोखे से, बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या डिजिटल तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। विपक्ष ने इस विधेयक के विरोध में सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष का कहना था कि इस तरह के 11 राज्यों से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ा जाना चाहिए। विधेयक में गलत तरीके से धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना गया है जिसके लिए 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 5 लाख रूपये तक का जुर्माना भी भरना होगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस समूह में माओवादी शामिल है जो डिविजनल कमेटी सदस्य, एरिया कमेटी सचिव, कमांडर और एरिया कमेटी सदस्य जैसे अहम पदों पर थे। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों पर कुल मिलाकर 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच गढ़चिरौली पुलिस के अधीक्षक नीलोत्पल ने विश्वास जताया है कि बाकी बचे माओवादी, जिनकी संख्या अब बहुत कम रह चुकी है, वे भी 31 मार्च 2026 की समय सीमा से पहले आत्मसमर्पण कर देंगे ताकि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। 2025 शुरुआत से लेकर अब तक गढ़चिरौली में कुल 123 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। हिमांगी कुलकर्णी, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 37 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता वीएस शिवकुमार को अरुविक्करा निर्वाचन क्षेत्र से और पूर्व विधायक केएस सबरीनाथन को नेमोम से उम्मीदवार बनाया गया है। संदीप वारियर त्रिकारपुर से, मोहम्मद श्यास कोच्ची से, नट्टा कोम सुरेश इट्टुमानूर से और राज्य युवा कांग्रेस सचिव अबिन वर्की अरनमुला से उम्मीदवार होंगे। पार्टी की पहली सूची में 55 उम्मीदवार थे। केरल में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को निर्धारित हैं। उधर पुदुचेरी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुदुचेरी और कराईकल जिलों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तैयार करने के पहले खेप का काम पूरा हो गया है। ये मशीनें संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। सभी मशीनों को चुनाव अधिकारियों की निगरानी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के नंद किशोर सोमानी कैंसर चिकित्सा ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी। वे उड़िया बाबा आश्रम और दावानल कुंड भी जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति कल वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के आरती में शामिल हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। राष्ट्रपति 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति वृंदावन स्थित निव करौरी बाबा की समाधि पर जाएंगी और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके अलावा वे उड़िया बाबा आश्रम और दावानल कुंड का भ्रमण करेंगी। वहीं दोपहर में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए नवनिर्मित ऑंकोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी। इस ऑंकोलॉजी ब्लॉक में आधुनिक रेडियोथेरेपी और जाँच की सुविधाएं हैं। वहीं शाम को राष्ट्रपति वात्सल्य ग्राम जाएंगी जो बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए काम करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, वृंदावन।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में जनजातीय होम स्टे मालिकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। ये आयोजन भारतीय पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया गया। इनमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना और आदि कर्मयोगी अभियान शामिल हैं। फोर्ब्स ने अरबपतियों की नई सूची जारी की है। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। सूची में अमरीका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। ताजा सूची में 26 भारतीय अरबपति पहली बार शामिल हुए हैं। भारत में इस समय 229 अरबपति हैं। भारत 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये चैंपियनशिप ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम परिसर में आयोजित होगी। ये पहला मौका है जब भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। इस वर्ष की विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से पोलैंड के तोरुन में शुरू हो रही है। इसमें 26 स्पर्धाएं होंगी। फ्रांस में ओरियल्स मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, ईशारानी बरुआ और मालविका बसोड ने महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष डबल्स में अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमसा करुणन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी राउंड ऑफ 16 के मैच में जापान के योदाई ओकीमोतो से हार गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद जागृति। पश्चिम एशिया संघर्ष के तेल और गैस की जंग में बदलने को दैनिक जागरण सहित आज प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पत्र ने लिखा है, बदले की आग में धधकी रिफाइनरियां। अमर उजाला लिखता है, ईरानी हमले से धधके सऊदी, कुवैत और कतर के ऊर्जा संयंत्र, संकट गहराया, कीमतें बढ़ी। नवभारत टाइम्स ने 24 घंटे में 5 राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की सुर्खी है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ईरानी हमला। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर गहराता संकट शीर्षक से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को दिया है। पत्र लिखता है, इसराइल और अमेरिका के ईरान पर साझा हमले के बाद अब युद्ध ने जो रुख अख्तियार कर लिया है उसमें शांति की उम्मीद फिलहाल धुंधली लग रही है। देशबंधु की खबर है, 12 देशों की ईरान से हमले रोकने की अपील। सऊदी की राजधानी रियाद में बैठक के बाद जारी किया संयुक्त बयान। पंजाब केसरी की सुर्खी है, सेंसेक्स धड़ाम, निवेशकों के डूबे 12 लाख करोड़। देशबंधु ने एजीआर की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, राज्यसभा के 73 सांसदों पर आपराधिक मामले। हिंदुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से एम्स के हालिया अध्ययन को प्रमुखता दी है, खून पतला करने वाली दवाओं का घट रहा असर। राजस्थान पत्रिका ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर लिखा है, युवाओं की खुशी का नया दुश्मन बना सोशल मीडिया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बात की। पश्चिम एशिया में ऊर्जा ढांचे पर हमलों की निंदा की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ईरान ने इसराइल के उत्तरी शहर हाइफा में तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमले किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और भारत 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।